जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का दसवें स्कंद पहला अध्याय, जो कि भगवान श्री कृष्ण की अवतार का परिचित। तो इसी सत्र में आज के श्लोक संख्या 67। मातरं पितरं भ्रातृन् सर्वाञ्च श्रुहु तथा नान्ति हि आशु तृप्तश्च धान्तिं निहातु तृप्तलुब्धा। राजनः प्रायशो भुवि मातरं पितरं भ्रातृन् सर्वाञ्च श्रुहु तथा दन्ति हि आशु तृप्तं लुब्धा। राजनः प्रायशः भुवि मातरं पितरं भ्रातृन् सर्वाञ्च श्रुहुतस्तथा दान्त्रि आशु तृप्तलुब्धा। राजनः प्रायशो भुवि मातरं पितरं भ्रातृन् सर्वाञ्च श्रुहुतस्तथा दान्तिः आशु तृप्तलुब्धा। माताएं मातरं पितरं भ्रातृन् सर्वाशुस्तथाशुदलब्धा। राजनः प्रायशो भुवि मातरं पितरं भ्रातृन् सर्वाशापि हृदस्तथा मातरं पितरं भ्रातृन् सर्वाञ्च श्रुहुतस्तथा राजनः प्रायशः। मातरम माता को, पितरम पिता को, भ्रातृन् भाइयों को, सर्वाञ्च सबको, सृहदः मित्रगण, तथा भी दन्ति मारते हैं हि निस्संदेह आश्रूपः, जो अपनी इंद्रियों के लिए अन्य से ईर्ष्या करते हैं, लुब्धाः लालची, राजनः ऐसा राजा, प्रायशः प्राय, भुवी पृथ्वी पर। तो सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, इसी पृथ्वी पर इंद्र तृप्ति के लालची राजा प्रायः सदा अपने शत्रुओं का अंधाधुंध बाध करते हैं। वे अपने सनक की पूर्ति के लिए किसी का भी, यहां तक कि अपने माता पिता भाइयों या मित्रों का भी वध कर सकते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भारत के इतिहास में हम पाते हैं कि औरंगजेब ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने भाई तथा भतीजों को मार डाला और अपने पिता को बंदी बना लिया। इसी तरह के अनेक दृष्टांत मिलते हैं और कंस ऐसा ही एक राजा था। कंस को अपनी भांजा को मारने तथा अपनी बहन तथा पिता को बंदी बनाने तानिक भी हिचकची चाहट नहीं थी हुई। असुर के लिए ऐसा कार्य करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यद्यपि कंस असुर था किंतु उसे पता था कि विष्णु का वध नहीं किया जा सकता और इसी तरह उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु के कार्य की थोड़ी सी भी जानकारी से मोक्ष मिल सकता है। कंस कृष्ण के विषय में थोड़ा बहुत जानता था कि उनका वध नहीं किया जा सकता, अतः विष्णु या कृष्ण को अपना शत्रु मानते हुए भी उसे मोक्ष मिल सका। भला जो व्यक्ति भगवत गीता जैसे शास्त्र की विवरण द्वारा कृष्ण को पूरी तरह जानता है उसके बारे में क्या कहा जाए। अतः हर एक का कर्तव्य है कि भगवत गीता पढ़े और कृष्ण को पूरी तरह समझे, इससे उनका जीवन का सफल हो सकता है। श्री प्रभुपाद की ओम। ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सो। वन्दे अहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। भक्त सज्जन वृंद माताएं, तो ये वास्तविक हमारा परम सौभाग्य है। मेरे को तो ये जानकर नहीं आप लोग कितने इसमें भाग ये होंगे, लेकिन इसमें मेरा ज्यादा इसमें ये फायदा होगा, इसी लोभ में हम आए हैं। वास्तविक जब दिल्ली आते हैं, हम दिल्ली में कोई प्रचार करने के लिए नहीं आते हैं, हम प्रचारित तो होने के लिए आते हैं। वास्तविक दिल्ली जब आते हैं, भक्त के स्वभाव और उनकी संग लेना चाहते हैं। वास्तविक हम दिल्ली जब आते हैं तो वहां पे तो भक्तगण थोड़ा कृपा करके यहाँ भेज दिया आप लोग की संग के लिए। तो इसलिए हम विशेष आभारी हैं आप सबके। और श्रीमद् भागवत में के समझना और उसको अपने जीवन में ये करना, ये तो बहुत ही हम जैसे क्षुद्र जीव के लिए तो बहुत ये है। तो ये आशा रखते हैं कि श्रीमद् भागवतम की जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं और श्रीमद् भागवतम का जो उद्देश्य भगवान कृष्ण की भक्ति करना, तो उसी प्राप्ति के लिए हम कोशिश करेंगे आप लोग की सहयोग से। तो इसलिए आपका कृपा बनाए रखें ऐसे। तो ये दशम स्कंद में पहुंचे, दशम स्कंद की वर्णन किए श्री प्रभुपाद ने कि ये सनम वनम अर्थात श्रीमद् भागवतम का सार वस्तु है जहां की हम लोग पहुंचे श्रीमद् दशम स्कंद। क्योंकि श्रीमद् भागवतम पढ़ने का यही एकमात्र उद्देश्य परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के विस्तृत रूप से उनकी जाना। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य जन्म का वही पूर्ति लाभ होगा जब जन्म कर्म च में दिव्य ये जानेंगे हम। जब तक हमको ये जन्म कर्म च में दिव्य नहीं जान सकते भगवान की, तब तक हमारा उसमें कुछ बाकी रहेगा उसको समझना चाहिए। क्योंकि जब तक हम लोग का जन्म कर्म च में दिव्य भगवान का ये पता नहीं चलता और कहीं इसका महसूस नहीं, जब उसका उपलब्धि भी नहीं हुआ, तो फिर क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन नहीं आएगा। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन भगवान कहते हैं, उस लाइन को तो भूल जाना चाहिए बस। कि पहला लाइन को हम लोग ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण देना चाहिए। और विशेष करके जब नवमा स्कंद में वास्तविक भागवतम तो खत्म कर चुके थे सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि ये आशा रखते थे कि बहुत कम उम्र है, अभी समय बहुत निकट आ रहे हैं परीक्षित महाराज की, तो इसलिए बहुत जल्दीबाजी से खत्म कर रहे थे नवमा स्कंद में। अंत में आप लोग देखें भगवान राम जी की लीला भी कह दिए दो अध्याय में, उसके बाद भगवान कृष्ण की बलराम के साथ कैसे लीला, वो भी कहा कि बस समेटना चाहते थे। लेकिन परीक्षित महाराज जैसे भगवान की भक्त वो कहां ये होते तृप्ति होते हैं। हम लोग कोई होते तो भाग के बैठे कि जल्दी किसे खत्म कर दे, नहीं तो तक्षक आ जाएगा, हमको ऐसे कोई अभिशाप मिल जाए। साधारण हम लोग भागवतम क्लास में सब बैठते हैं, कोई मैसेज आ जाएगा तो तुम्हारे घर में ऐसे हो गया कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, तो वहीं से भाग के भाग है ना। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे व्यक्ति नहीं थे। वास्तविक ये श्रीमद् भागवतम में जो दिए गए हरेक जो उपमा शिल्प ये सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं कि और उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है श्रीमद् भागवतम में, हर प्रकार के व्यक्तित्व से उनकी भगवान के प्रति कितने उनकी निगढ़ भक्ति है वो देखने का विषय। वास्तविक जो भक्त भाई विशेष करके हम लोग जैसे भक्त हैं, भक्ति मार्ग में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, दूसरों की बात हम नहीं कहते, हमारे बात कर रहे हैं, बस हम प्रयास कर रहे हैं उसमें कैसे थोड़ा चल सकते इस रास्ते में, तो उनके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण ये संदेश श्रीमद् भागवतम में दिया। जब सुखदेव गोस्वामी इसको खत्म करना चाहते थे, परीक्षित महाराज उनको मना किए कि नहीं, और आप विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए भगवान कृष्ण, क्योंकि वो जानना चाहते हैं। वास्तविक इस परीक्षित महाराज तो ऐसे कोई अनजान नहीं था कि नहीं उन भगवान की कृष्ण का जो विशेष लीला उन जानते नहीं कि जन्म कर्म चा दिव्य ये उनको जानकारी नहीं है जानते, ये तो नहीं था। ये परीक्षित महाराज विशेष करके कल्याण की हमारे ऊपर कृपा किए। हम लोग जैसे आएंगे जो बद्ध जीव हैं, किसी को जिसको भगवान की भक्ति में कोई ये नहीं है, तो वो लोग कैसे इस संसार में पार कर सकते हैं? नहीं तो संसार में पार होने का क्या राय ये करेंगे? कोई ध्यान करेगा, कोई योग करेगा, कोई तपस्या करेगा, कोई कर्म में फंसे रहेगा, कर्म योग ये जो कैसे फंसे, तो उसमें ये पाने के लिए कहाँ रास्ता भटकेगा ये। तो उन लोग विशेष मंगल के लिए कृपा, उनके लिए अहेतुक कृपा करने के उपरांत यही जिज्ञासा किया पहले से। श्री राज जगन्नाथ बलदेव चंद्र महाराण की जय। तो ये परीक्षित महाराज आगे पूछते हैं कि आप विस्तृत उससे वर्णना कीजिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, आप तो अब बहुत कम उम्र, ये हो गया, टाइम हो गया, 7 दिन का पूरा हो रहा है, नहीं नहीं, भूख प्यास भी लगा होगा, 7 दिन से नहीं खाया, नहीं नहीं। तो परीक्षित महाराज बोल रहे कि प्यास कहाँ सताएगा, जिसको भागवत रूपी अमृत जिसको मिल रहा है हमेशा पीने के लिए, वो पानी से थोड़ी उनको प्यास बुझेगा, नहीं नहीं। तो ये तो भूख प्यास इसलिए सताता है कि हम लोग को इसी शरीर का चिंतन में, नहीं तो भूख प्यास कहां सताएगा हमको। हम लोग दो बार देखते हैं कि टाइम हो गया 9 बजे, क्यों घंटी नहीं बजा प्रसाद होगा, क्योंकि हम लोग इतने शरीर चेतना में रहते हैं, इसे कोई ये नहीं कि ये कोई अस्वाभाविक नहीं, हम नहीं कर रहे कि कोई ये कर रहे, हम लोग किसी की आलोचना नहीं कर रहे, उसको गलत मत समझिए, क्योंकि वास्तविक हम लोग ऐसे देह धारणा में है, इसी देह धारणा से कैसे हम लोग चिन्मय वस्तु जो कि भगवान की जन्म कर्म दिव्य, उसको कैसे जान सकते हैं, और ऐसे भगवत भक्त हम पर विशेष कृपा नहीं करेंगे तो कैसे जान सकते, हम लोग जानने के लिए नामुमकिन है, उस जानने का कोई ये नहीं संभव ही नहीं है कोई जानने का भगवान। तो परीक्षित महाराज ऐसे भगवान की भक्त, उनका कृपा माध्यम से हम लोग जानकारी कर सकते हैं। तो इसलिए सत्र में हम लोग को ये भगवान की लीला पढ़ने का हम लोग का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ परीक्षित महाराज की कृपा से। भगवान के विशेष जन्म कर्म जो है विशेष करके, वो दिव्य कैसे, तब वो जानने का मौका मिला हमको, नहीं तो इतने सारे नहीं बताते, तो नहीं तो बाहर के लोग जैसे आलोचना कर रहे हैं भगवान कृष्ण की विभिन्न लीला, तो हम लोग भी उसी में फंसते हैं ना। भगवान के जन्म कर्म दिव्य कैसे जान सकते हैं, हम लोग जानने का कोई ये नहीं था। परीक्षित महाराज हमारे ऊपर ऐसे कृपा किए तो तभी हमको जानने के लिए ये मिल रहा है कि वास्तविक जन्म कर्म ये दिव्य है। तो उसी संलग्न में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि वास्तविक भगवान ने क्यों आविर्भूत हुए, और भगवान तो भगवान है ना, उनको कोई काम करने का जरूरत नहीं है, आने का क्या जरूरत, तो अपने धाम में रहकर तो सब कुछ कर सकते हैं ना। इच्छा मात्र में जिसके सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा हो रहे हैं, इनका शक्ति ही इतना करने के लिए सामर्थ्य है, शक्ति ही नहीं उनके नाम करने में इतने सामर्थ्य है। भगवान के एक नाम करने से भी वही प्राप्त हो सकते जिसके जितने उनका शक्ति जितने जो काम करते हैं, तो वही भगवान, उनको आने का क्या जरूरत है संसार के। भगवान वास्तविक ये देखाना चाहते थे अपने ये शुद्ध भक्त को, वास्तविक कैसे भगवान निराकार नहीं है, कोई निर्विशेष ब्राह्मण नहीं है, कोई ऐसे किमुत किमाकार, कभी कभी बड़े विभ्रांति कर ये कहते हैं ना कि भगवान निराकार है, इसमें ध्यान कर लो ये कर लो। भगवान ये दिखाना चाहता वास्तविक मैं आप लोग जैसे ही ऐसे ही हूं, लेकिन मैं भगवान हूं। ये बड़े विचित्रता है भगवान की लीला में हम देखते हैं। कभी कभी देखते हैं कि भगवान नंद बाबा की जूते ये चप्पल नहीं उठा पाते, उनकी शक्ति ने सामर्थ्य नहीं है, डरपोक जैसे अंधेरा घर में कभी घुसते नहीं है, शाम होने तो बस माता की यशोदा माता की गोद में घुस जाते थे, डर लग रहा है मत। अरे वही भगवान कैसे गिरिराज पहाड़ को इतना ये करके उठा लिए। तो भगवान क्या करते हैं, क्योंकि इसमें कभी कभी जो साधारण व्यक्ति हैं, जो जिसकी कम है, जो प्रामाणिक परंपरा से उसको श्रवण नहीं करते, उनकी उसमें बहुत विभ्रांति कर ये आ जाती है, भ्रांत भ्रांत धारणा सभी बोलते हैं आजकल। तो इसलिए तो भगवान की बहुत आलोचना चल रही है, और वास्तविक भगवान में आलोच्य होना चाहिए, नहीं नहीं, चाहे कोई नास्तिकवादी हो कोई ये हो। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताते वास्तविक ये भगवान की जो विशेष कार्य, और भगवान जो आविर्भाव प्रकट होते हैं इस संसार में, उनकी विशेष इच्छा से प्रकट होते हैं, और सभी जो इनकी जो लीला है ये भगवान की इच्छा, भगवत इच्छा से सभी हो रहा है। हम लोग अपने दिमाग दौड़ाना नहीं चाहिए ऐसे क्यों हो गया, जैसे अभी चर्चा चल रहा है, ये इसकी पहले आप लोग सुना होंगे, नारद मुनि गए कंस को बता दिए, ऐसे तो वो बदमाशी था कंस, तो उनको क्या बोलना जरूरत था कि ये देवकी का सभी पुत्र ऐसे हो सकते हैं, और सभी वृष्ण वंश से ये वंश सभी देवता सभी ऐसे प्रकट हुए, क्या बोलने की जरूरत था। तो कई कई बोलते थे क्या नारद मुनि का कुछ और कोई काम नहीं है क्या, ऐसे तो बदमाश हैं, तो बदमाश को और बदमाशगिरी करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये कौन से भक्त का लक्षण है कोई कि ऐसे ये करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत निगूढ़ रहस्य है उसके पीछे। भक्त कभी नहीं चाहता कि भगवान से ज्यादा दूर रहे हैं, उसके बिछड़ कर रहे हैं। ये भगवान की और भक्त के साथ ये विशेष संबंध है उनकी। वो कभी नहीं चाहता कि वो चाहता हमेशा कि भगवान जल्दी मुझे प्राप्त हो जाए। जैसे हम लोग पहले से सुने हैं कि भगवान के बैकुंठपुर में जब ये द्वारपाल उनकी जय विजय जब ये हुए अभिशप्त हुए तो उनको भगवान ने दिए, तुम लोग भक्त होके पैदा होंगे कि नहीं मेरा बैरी होके मेरा शत्रु होके जन्म लोगे। भक्त होंगे तो आपको 7 जन्म लेना पड़ेगा, 7 बार जन्म लेने के बाद आएंगे मेरे पास तुम लोग का। अरे मेरा अभक्त बन जाएंगे तो 3 जन्म। अरे प्रभु वही कृपा कर दीजिए हमको। नहीं, कौन 7 जन्म इंतजार करेगा आपके पास, आपके लिए प्रातः 7 जन्म तो बहुत है, फिर बीच बीच में भटक जा सकते हैं। ऐसे ये बहुत बड़ा शिक्षा है वास्तविक हमारे भक्ति मार्ग में। कभी कभी हम लोग भक्ति मार्ग में आ जाते हैं, 16 माला जप करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं, सब कुछ ये करते हैं, ठीक है चलता रहता है, कोई खराब नहीं है, दूसरे के लोग से तो हम थोड़ा अच्छा है, ऐसे करके अपने दिनचर्या को बिता चलते रहते हैं। अरे इसको कोई इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये नहीं बढ़ाते हैं, अपने उत्साह नहीं ये करते हैं। तो ऐसे ही ऐसे रहेगा तो उनको 7 जन्म तो होना पड़ेगा, पता नहीं 7 की 70 होगा कि 700 भी हो सकता है। लेकिन हम लोग ज्यादा से उत्कंठा अपना प्रकट करेंगे तो इसलिए भक्तरसामृति में बताया कि रूप गोस्वामी की भक्तों का एक लक्षण ये होना चाहिए कि हमेशा जितने अतृप्त आत्मा अतृप्त तृषई, अतृप्त तृषई का मतलब ये है कि जितना भक्ति कर रहे हैं कि वो हमेशा समझ रहे हैं कि नहीं ये बहुत कम कर रहे हैं हम, नहीं तो कभी कभी बताते कि अरे इतना सेवा कर दिया प्रभु जी दे दिया मुझे थोड़ा या छुट्टी में जाना चाहिए, कहीं घूमना फिरना ये करना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए। जैसे जन्माष्टमी वगैरह बड़े फेस्टिवल आते हैं, मंदिर में बहुत सेवा करते हैं, प्रभु जी इतना सारा सेवा करते हैं ना, हमको थोड़ा जगन्नाथ पुरी भेज लीजिए, हम थोड़ा जाके घूम के आ जाए। अरे जगन्नाथ पुरी जब इधर खुद विराजमान है तो क्या जानना जरूरी है। मतलब जो भक्ति का जो वास्तविक फल है, मतलब सेवा करने का इतना एक फल है कि हम लोग सोच रहे बात से हम लोग ये भौतिक शरीर में थोड़ा ज्यादा बहुत हम सेवा कर दिया, अपने कैपेसिटी से ज्यादा कर दिया ऐसे सोच रहे हैं। लेकिन आप याद रखिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब भगवत धाम जाएंगे तो वहां तो 24 आवर करना पड़ेगा, है ना। और 24 आवर ऐसे नहीं है, आजकल क्या बोलते हैं 24/7 बोलते हैं ना, सो दुकान में नाम लिखते हैं, हफ्ता में 7 दिन पूरा 24 दिन में 24 घंटा करना पड़ेगा। अरे रेस्ट नहीं है, रात नहीं वहां सोने का, कभी कभी ऐसे विचित्र प्रश्न आता है रेस्ट करने के लिए जागा ही नहीं रेस्ट करने के लिए, वहां रात होता ही नहीं वहां पे, कहीं के बोलते नहीं जाने से अच्छा है यहां बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ थोड़ा बहुत जन्माष्टमी फेस्टिवल में ज्यादा करते हैं, रात 2 बजे तक अभिषेक होके ये होता है थक जाते हैं। तो आप इसको सोचिए कि वहां जाके 24/7 पूरा 24 घंटा और सप्ताह में कोई छुट्टी नहीं है, पूरा जाके सेवा करना पड़ेगा तो कैसे कर सकते हम लोग, इतना तैयारी नहीं होंगे तो। क्योंकि वहां कोई भौतिक शरीर होगा ही नहीं वहां पे कोई कि आपको जरूरी है इसी शरीर के लिए, यहां तो ये शरीर पड़ा है इसलिए हम लोग उसके लिए रेस्ट चाहते हैं, इसलिए हमको कृपा करके रात दे दिए भगवान ने। अरे मरी जाएगा नहीं तो बेचारा, तो दे दिया इसलिए थोड़ा विश्राम करना चाहिए। लेकिन उसी में हम लोग आराम से रहे तो फिर क्या होगा। बोले कि ठीक है 8 घंटा प्रभुपाद कहने से भगने, 8 घंटा तो बहुत हो गया, नहीं 8 घंटा नहीं कर पाते कभी कभी, तो 24 घंटा का तो दूर की बात है। तो इसलिए उसको प्रस्तुति करने के लिए, क्योंकि ये जो जगह है हम लोग, इसलिए साधन वैदिक भक्ति इसलिए हम लोग पालन करते साधन भक्ति, क्योंकि हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कोई ड्रामा आप परफॉर्म करते हैं ना, करते हैं यहाँ प्रभु जी आप लोग ड्रामा परफॉर्म करते हैं, कोई फेस्टिवल में ड्रामा परफॉर्म करते तो आप बस कोई ये ले लिए तो उसको ऐसे ही जाके खड़ा हो जाते क्या स्टेज में, खड़ा हो जाते ऐसे जाके, वैसे प्रभु जी आप ये ड्रामा कर लो ऐसे करके किसी को दे देते हैं और किसी किसी को और खड़ा कर देते हैं। उसके लिए कितना तैयारी करते, कितना रिहर्सल करते, कितना ये करते हैं, और वो एक्टर ठीक नहीं होता फिर उसको बदलाव करके दूसरा को ये करते हैं। तब ये साधारण जब एक छोटा सा ये करने के लिए हमको इतना तैयारी होना पड़ता है, प्रिपरेशन करता है, तो वहां जब भगवान का भगवत धाम जाएंगे जहां की लक्ष्मी सत्य सहस्र संभ्रम सेव्य मानम जहां करते कि, तो हमारा वहां पाली कहाँ आएगा बताइए, तो हमारा नंबर लगेगा वहां सेवा करने के लिए, और हम जैसे पूरे कंप्लीटली अनक्वालिफाइड पर्सन नहीं, नहीं भगवान के भक्ति के लिए तो है नहीं कोई जगह सेवा करने के, दूर की बात है, तो कहाँ हमारा। इसलिए इसी ये जो हम लोग जो वैद्य भक्ति हमको पालन कर, कभी कभी भक्त लोग सोचते अरे वैद्य भक्ति करने का क्या ये है, सीधा तो रागानुग हो जाना चाहिए जाके भगवान के साथ अपने गोपाल बालक जैसे ये करते हैं, हम लोग जाके भगवान के साथ ये करेंगे तो इसे तुरंत ही होना, कभी कभी जंप मारते हैं, लेकिन जंप मारने से क्या होता है बहुत चांस है उसमें टांग टूटने का नहीं, नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कहे कि हम लोग ये परफेक्शन लाने के लिए, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए जैसे हम जैसे ये लोग नहीं चाहिए उनको, वहां कोई जरूरत नहीं कि कोई कम पड़ रहे हैं भक्त, यहाँ तो हमारा भक्त कम पड़ रहे इसलिए हम लोग किसी को भी लगा देते हैं, अरे नहीं तो फेस्टिवल ही नहीं होगा नहीं, नहीं। तो ये तो बहुत बड़े कृपा है इसलिए प्रभुपाद और इनकी जो अनुजाई है इनकी बहुत बड़ा कृपा है कि हमको इस सेवा में लगाते हैं, ताकि हमारा ये अपरिपूर्ण जो अपूर्ण है इंद्रिया है उसको कैसे पूर्ण करने के लिए हम लोग को ये दिया जाती है, तो ताकि जब हमारा पूर्ण इंद्रिय होगा क्योंकि हम लोग जान, तब जाके हम लोग उसी पूर्ण इंद्रिय में जान सकते हैं कि ये भगवान की अलग लीला। इसलिए कहते हैं कि ये भगवान की जो दिव्य लीला ना भवेत ना ग्राह इंद्रिय, ये भगवान का भक्ति ये भौतिक इंद्रिय के माध्यम से नहीं करा जा सकता, कि उसको अनुभव ही नहीं है तो करने तक बात दूर है, लेकिन सेवन मुख ही जीवा दो। ये भगवान के नाम जब हम लोग सेवा का रूप में अपने जीवा से शुरू करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, खाली भगवान का नाम नहीं भगवान का प्रसाद भी जीवा का माध्यम लेते हैं नहीं, नहीं ये दोनों जाके क्या करते हैं फिर अपने कार्य करते हैं, तो फिर उसी जो इंद्रिया में हम लोग भगवान का सेवा करने कोई क्षमता नहीं है उसका, तो वो क्षमता प्राप्त हो जाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो ऐसे करते करते फिर हम लोग समझ जाते हैं वास्तविक कि भगवान की क्या ये है, तब जाके हमारे वास्तविक जो भगवान कह रहे कि जन्म कर्म च मैं दिव्य जो मैं व्यति तत्व है त्यक्ता देह हम पुनर्जन्म, उसकी बाद हम लोग जो शरीर त्याग करेंगे और पुनर्जन्म नहीं होगा, हम लोग भगवान की सेवा में नित्य निरंतर लग के रहेंगे। तो ऐसे ये लीला है जैसे चल रहे हैं अभी, तो इसलिए कोई नहीं सोचना चाहिए कि नारद मुनि ऐसे बहुत गलत कर दिया कि इनको बोलने का नहीं चाहिए जी, कंस को क्या बोलने का जरूरत है, ये तो भगवत प्रेरित है भगवान के द्वारा प्रेरित होकर ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि जल्दी आ जाएंगे भगवान कृष्ण बलराम यहाँ और जल्दी आके इनको मार के फिर ये प्रतिष्ठा करेंगे। कई कई बताते कि अरे तो इंतजार कर सकते थे ना, इंतजार करेंगे करने से भी ऐसे ही फायदा होगा, मिलेगा तो भगवान तो आएंगे, भगवान तो वचन दिए हैं, इससे पहले पृथ्वी माता और ये जो गए थे ब्रह्मा जी और देवता लोग सब गए थे उनको तो भगवान आश्वासन दे दिए थे, वचन दिए थे कि हम जाएंगे, अरे कब जाएंगे ये तो डेट नहीं बताए ना, जाएंगे कह दिए थे भगवान ने, कब जाएंगे कैसे जाएंगे ये करेंगे वो नहीं बताए थे कब जाएंगे, तो हम लोग ऐसे रिलैक्स मूड में रहेंगे तो भगवान भी ऐसे बोले कि ठीक है हम भी थोड़ा रिलैक्स करते हैं यहाँ, तो हमारा इंटेंशन लव नहीं होगा तो हमारा जो ये इंटेंशन नहीं होगा तो भगवान क्यों जाएंगे। ऐसे प्रभु जी पूछ रहे थे आने के रास्ते में, क्यों भगवान को ऐसे इंतजार इसे बच्चों को भी आप माताजी लोग आप बच्चों को भी नहीं खिलाते हैं जब तक बच्चा इंटेंस नहीं होता है और रोता नहीं कि कुछ पूछता नहीं खाने के लिए। आप तो अपने घर काम में लगते रहते हैं और बच्चे सोया है, जब तक नहीं रोता है तो तब जाकर माँ दौड़ के नहीं जाती है उसके पास। तब ये भौतिक जगत में जब ऐसे लेन देन होता है तो बच्चे का आप ये तो बोलेगा अरे बच्चे कितने निर्दयी है, माँ नहीं जा रहे उसको कि नहीं खाना खाया सुबह से, अरे बच्चा नहीं रो रहा है कोई बोल नहीं है तो क्यों खिलाएगा उनको जाके। ऐसे नहीं कोई बोल सकता है कि नहीं बस माँ बहुत निर्दयी है नहीं जा रहे बच्चों को नहीं खिला रहे। तो भगवान ऐसे नहीं, भगवान का है कि हम जाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसे ढीला ढाला से बोले ठीक है भगवान तो आएंगे हम क्यों इनको ये करेंगे। तो भगवान के भक्त ये चाहते कि भगवान कैसे जल्दी आ जाए, नहीं नहीं। और भगवान भी ये देखते उपेक्षा कर रहते हैं, कई कई ये महात्मा लोग को पूछते कि अरे भगवान तो जानते हैं इतने सारे ये है तो भगवान आज क्यों जाते हैं खुद अपने आप। भगवान ही बड़े विचित्र हैं उनकी लीला भी, जबकि परम स्वतंत्र सब कुछ हैं करने वाले हैं फिर भी अपने भक्त का पुकार को इंतजार करते हैं। जैसे हम लोग ये लीला सुने माधवेंद्रपुरी की लीला, अरे गोपाल जी वहां प्रकट है सारे संसार को ये करने वाले जो उद्धार करते हैं और खुद नहीं उठ पाते हैं वहां से झाड़ से, क्योंकि वो इंतजार करते हैं कि कब मेरा भक्त आएगा हमको उठाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं जगन्नाथ जी की, इनकी कृष्ण बलराम की सेवा में लगे हैं, अरे क्या सेवा करना जरूरी है अभी ठंडे के टाइम एसी लगाना क्या जरूरी है ये करना कि भगवान ये उपेक्षा करके रहते हैं कि वास्तविक मेरा भक्त कब आएगा हमको पंखा लगाएगा हमको पहनाएगा। तो कोई कोई ऐसे बड़े बुद्धिमान भक्त चाहेंगे अरे भगवान तो ट्रांसजेंडर हैं उनकी सन्मय चिन्ह शरीर है उनको पंखा क्यों दिया जाए, ऐसे कोई बुद्धिमान बड़े सोच लिया तो क्या होगा उनके भक्ति में। ये महसूस करना चाहिए कि भगवान हम जैसे हैं, भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि तो भक्तों को अपने इसमें लगाना चाहते कि वास्तविक ये महसूस करे मैं ये आदमी जैसे हैं वो जैसे मैं भी ऐसे ही हूं। तो इसलिए भगवान बार बार ये करने के लिए किसी की पुत्र होते हैं किसी की भाई होते हैं किसी की बंधु होते हैं किसी की ये होते हैं, नहीं तो भगवान जो अजन्मा है वो क्यों आएंगे इसमें ये जो इस संसार में। यहां तो कोई भोग करने के लिए अभाव नहीं कि कम पड़ रहे हैं वहां गोलक वृंदावन में, नहीं ये जाके भौतिक जगत में जाके कुछ भोग लें, और वहां कोई आनंद का कम ही नहीं है कि कोई भक्त का कमी नहीं पड़ रहा है कि यहाँ के पकड़ में पड़ रहे हैं। नहीं ये हम लोग जैसे बद्ध जीव हैं इनको ये लगाना चाहते वास्तविक जी, लगाने से क्या होगा ये हमारा कल्याण होगा उसमें, ताकि हम लोग रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं। जैसे वो जो रेसिप्रोकेशन है इसी भौतिक संसार में अपने पुत्र परिजन ज्ञान्ति कुटुंब इनके प्रति जो रेसिप्रोकेशन सेम रेसिप्रोकेशन इफ वी कैन कन्वर्ट टू कृष्ण, कृष्ण के प्रति हम लोग जो इसको अर्पित कर सकते हैं तो उसको भगवान क्या करते हैं अपने भक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, तो उसमें फिर परफेक्शन हमारा आ जाती है। नहीं तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि नारद मुनि का ऐसे कहने का मतलब ही क्या है, तो प्रभुपाद इसी श्लोक में कह रहे हैं कि देखिए ये असुर का स्वभाव ऐसे ही है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक जैसे भक्त का स्वभाव है, असुर का कोई डेफिनेशन भी होना चाहिए ना, असुर को कैसे पहचानेंगे। ऐसे कई कई टीवी में आप लोग देखते हैं कि उनके बड़े बड़े सिंह हैं, ये नहीं है कैरेक्टर उनकी डेफिनेशन, नहीं नहीं ये तो आकर्षित करने के लिए ऐसे कहते हैं ये करते हैं, लेकिन असुर का डेफिनेशन यही है कि जो भगवान के अभक्त हैं, सादा से डेफिनेशन छोटा सा अध्याय में भगवान कह दिए हैं भगवत गीता में, जो जो कि भगवान की भक्त नहीं है वही असुर है। तो ये तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक वही है, और अभक्त मतलब है तो उल्टा ही करेंगे काम ये लोग। तो इवन यहां तक यहां पे कहा गया कि अपने भाई बंधु कुटुंब अपने पिता माता को भी नहीं छोड़ दे असुर, क्यों नहीं छोड़े किन छोड़ते हैं किन छोड़ते हैं कि अपने इंद्रियों भोग के लिए इतने प्रबल उनकी ये बढ़ता है अपने को, तो अपने स्वार्थ का हानि के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, जैसे कि आजकल हो रहा है इस जगत में हम लोग देख रहे हैं। अपने पिता माता को भी भूल जाते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, पहले तो बहुत ये करते हैं पढ़ाई के टाइम में ये करने के टाइम में वो उनकी ये से डिपेंडेंस में जब तक रहते, जब थोड़ा ऊपर चला जाए तो अपने नौकर लगे तो बस ये कुछ नहीं किया हमारे लिए, क्योंकि ये ट्रेनिंग नहीं देती, ये बहुत बड़े विडंबना है। ये असुरी स्वभाव है यहाँ पे जैसे दिए गए हैं कि असुरी असुर की प्रवृत्ति जो लोग हैं अपने पिता माता का अपने स्वार्थ प्रभुपाद जी से उदाहरण दिया औरंगजेब का, ये आप लोग सभी इतिहास में पढ़े हैं, इसको ज्यादा बताना जरूरी क्योंकि इसमें देखना चाहिए कि वास्तविक कितने स्वार्थी हो जाते हैं आदमी। क्योंकि स्वार्थी क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊपर का चीज जो परमार्थ चीज है उनको ज्ञान नहीं, इसलिए स्वार्थी हो जाते हैं। अपने को कैसे अपने इंद्रिय तृप्ति होगा, अपने कैसे मेरे साथ जो रिलेटेड है उनको कैसे भलाई होगा, ये होगा, तो उसकी प्रति पूरा ये करते हैं और उनके लिए जो चाहिए उसी को ही बस जीवन बिता देते हैं अपना। यही भौतिक संसार का निचक ये सत्य है सभी लोग, तो इसलिए वहां से कैसे फिर ये मुक्त होंगे। तो प्रभुपाद उनके तात्पर्य कहते थे कंस का ये थोड़ा तो बड़ा सौभाग्य था, कम से कम उनको तो जानकारी था कि जो भगवान विष्णु है ये किसके द्वारा मारने वाले नहीं है, लेकिन हमारा कितना दुर्भाग्य जैसी है इस जगत में, हमको वो भी पता नहीं, हम तो सोचते हैं कि भगवान विष्णु के हम लोग मार सकते हैं। ये कंस हमसे बड़ा थोड़ा सुपीरियर ये था, राक्षस था, नहीं नहीं कि हम लोग इतना भी ये नहीं जानते कि भगवान विष्णु को कोई मार और मार सकते क्या, उनको है को बोल के कोई विश्वास ही नहीं करते हैं, मानने का तो दूर बात है, भगवान का अस्तित्व कोई स्वीकार नहीं करते हैं। हम भोगी हम बलवान हम सुखी, यही हमारा एक नारा लगता है ये संसार में। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि कंस जैसे असुरी स्वभाव का ये जो कैरेक्टर यहाँ पे वर्णन किए गए कि तो हमारा भक्त में उसमें क्या शिक्षा लेना चाहिए भक्ति भाव में, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जब इसमें आया तो हम लोग देखना चाहिए कि भागवतम में तो ये वर्णन किए गए कि भागवतम का हर एक श्लोक प्रत्येक श्लोक प्रत्येक अक्षर नाना अर्थ कहे और भागवतम का ये लक्ष्य होना चाहिए कि जीवन का कैसे भगवान के अहित्व की भक्ति हमको प्राप्त हो। तो इसी असुरी स्वभाव जानने से हमारा क्या फायदा मिलेगा, हम जो भगवत भक्ति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो हमारा उसमें क्या फायदा मिला, क्योंकि ये असुरी की स्वभाव है। कभी हम लोग भगवान भजन जब करते हैं ये उभड़ आते हैं हमारा भक्ति में, दूसरे भक्त कोई हमसे अच्छा सेवा किए अरे उनको प्रोत्साहन करने के बदले हम लोग उसको ये करते हैं, उनसे एनवियस हो जाते हैं, मश्चर्य आ जाते हैं, उनसे सहन नहीं पाते हैं, कभी ये नहीं कर पाते हैं, वहां क्यों ये कर दिए वो की। लेकिन तो ये हमारा आसुरिक प्रवृत्ति वास्तविक डिवोशनल लाइफ में, हमारा भक्ति मार्ग में यही आसुरिक प्रवृत्ति आती, नहीं तो इसको चर्चा करने का क्या जरूरत है। तो इसलिए जो साधक भक्त हैं इसलिए बहुत केयरफुल रहते हैं कि ऐसे प्रवृत्ति जब कभी आते हैं तो उसको रुक के इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, जबकि भगवत भक्ति में इसमें दिया गया चैतन्य महाप्रभु कहे कि उनकी नाम जो करते कि आनंदम बुद्धि वर्धनम कह रहे हैं, लेकिन हमारा क्यों आनंद बुद्धि वर्धन हो रहे हैं, हम दूसरों को क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं कि दूसरे को क्यों सह नहीं पाते कि दूसरे को ये करते हैं, खाली असुर लोग करते नहीं है, ये भक्तों का बीच में भी ऐसे हो जाता है, क्योंकि जो अपरिपक्व भक्त होते हैं जब भक्ति में हम लोग ये नहीं कर पाते तो इसका नेगेटिविटी तो आएगा ही आएगा, रिफ्लेक्शन तो आएगा। तो इसलिए हमको अपने को आत्मसमीक्षा करना चाहिए, पर्यालोचना ये करना चाहिए जिसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, अपने को समीक्षा करना चाहिए कि वास्तविक हमारा क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों ये नहीं कर पाते दूसरों को, ये नहीं करके दूसरों को प्रोत्साहन क्यों नहीं देते। तो ये हमारा आसुरी की प्रवृत्ति, हम कितने स्वार्थी हो जाते हैं, अपने सेवा कर दिए तो बस रह गए। कभी कभी इतने विचित्र भक्त हम देखे, मंदिर में सपोज वाटर टैंक है ना, पंप चलाते हैं कभी पानी भरने के लिए, वो पानी भर के तो जा रहे हैं, बोले कि वो दूसरे के भक्त का सेवा है ना, हमारा भक्त हमारा तो सेवा नहीं है, हमारा तो बस पुजारी करना है, बस हम करके अपने रूम में रह गए। ऐसे ऐसे विचित्र भाव कभी होके आ जाते हैं भक्ति इसमें, क्योंकि ये देखना चाहिए कि दीज आर ऑब्स्टेकल्स इन कृष्ण और कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइफ, क्योंकि ये तो हम लोग नहीं सीखते हैं, इसमें तो कोई भक्ति सामर्थ्य सिंधु में तो नहीं लिखा है, क्योंकि इसमें तो 64 प्रकार का अपराध लिखा है, इसमें ये लिखा है नाम अपराध लिखा, ये तो नहीं लिखा है कि वाटर पंप बंद करना, ये तो नहीं लिखा है, इसे कोई भक्त सोच सकता है ना। मंदिर में कुछ ये है, कोई भक्त का बीमारी है उसको सेवा पड़ रहे हैं तो हम बोले अरे वो तो उनका वो सेवा करना है ना, हम क्यों करेंगे, करने से उसका हाथ खत्म ये हो जा रहे हैं, कम पड़ रहे हैं उसकी, उनकी शक्ति सामर्थ्य चला जा रहे हैं। ये जो भाव आता है मन में ये देखना चाहिए कि वास्तविक उसमें कुछ ये है। ये जबकि शास्त्र में नहीं बताता कि लेकिन ये अपने भक्ति करने से दिनचर्या से हम लोग को अपने को इंट्रोस्पेक्शन करके जान सकते कि वास्तव की हमारा क्यों उत्साह नहीं बढ़ रहा है भक्ति में, ये नहीं कर ये वास्तविक में आपको नहीं कर रहे, ये हमारा अंदर है इसलिए हम कर रहे हैं वास्तविक, क्योंकि हमारा अंदर ऐसे भक्ति के कोई से ये नहीं है, इसलिए मैं आपको सामने कह रहा हूं, ऐसे मत सोचे कि आपको मैं कह रहा हूं। तो इसी इसमें हम लोग इसलिए पर्यालोचना करना चाहिए, इसी श्लोक में जब दिए कि कंस का स्वभाव ऐसे, कंस तो स्वभाव तो ऐसे ही है, तो उसको ये भागवत में ये वर्णन करने का सुखदेव गोस्वामी का क्या जरूरी है, इसको हर एक श्लोक का हम लोग अपने जीस में लेके पर्यालोचना करना चाहिए अपने जिंदगी में कि हमें जो भक्ति मार्ग में अग्रसर होने के लिए प्रयास कर रहे हैं वास्तव की इस श्लोक में क्या हमको शिक्षा लेना चाहिए। ये आसुरी की स्वभाव जो आती है कंस का हृदय में तो वो तो नेचुरल ही राक्षस था उनका बीच में आता है, लेकिन हमारा बीच में कैसे कौन सा राक्षस गुण आता है, तो इसको क्या करना चाहिए पर्यालोचना करके तो इंट्रोस्पेक्शन करके उसको धीरे धीरे सीनियर वैष्णव का जो वरिष्ठ वैष्णव है और अपने गुरु का उनकी संग लाभ करके उनको जिज्ञासा करके फिर वो असुर को हटाना चाहिए, क्योंकि असुर तो बिना हटाने से जाएगा नहीं, वो तो बैठ के रहेगा। तो इसलिए नारद मुनि गए तो उनको हटाने के लिए कंस को व्यवस्था किए, कितना जल्दी है हटेगा भगवान जब जल्दी आएंगे, और नहीं तो देवकी माता क्या सोचती होती, ठीक है एक पुत्र तो हो गया दूसरे पुत्र होने नहीं होने कोई चीज नहीं, उसके लालन पालन के लिए उनकी जिंदगी वहीं पे चल जाती, अरे ये सड़ गर्भ जो आप पहले से अभिशप्त हुए थे उनका भी काम नहीं बनता। तो भगवान की इसलिए सोचना चाहिए कि हमें समझना चाहिए हमेशा भगवान की जो लीला और क्रिया, इसलिए कह रहे हैं कि भगवान जन्म कर्म चामे दिव्यम, तो वही बात को हम लोग समझना चाहिए ताकि उसमें कोई डाउट और इसमें मन में नहीं आना चाहिए कि शंका नहीं होना चाहिए कि ऐसे ऐसे क्यों कर दिए, इसे नेगेटिविटी नहीं आएगा, नेगेटिविटी नहीं आने से हम लोग जब जितना भगवान की लीला को पॉजिटिविटी समझेंगे तो हमारा भक्ति भी इतना पॉजिटिव से बढ़ेगा, ताकि प्रभुपाद कहते हैं कि ना हो सके कि प्रभुपाद इसलिए अंत में कहें कि जो कोई इसके बारे में क्या कहा जाए कि अतः हर एक भक्त का यह कर्तव्य है कि भगवत गीता पढ़े और कृष्ण की पूरी तरह समझे, इससे उनके जीवन का सफल हो सकता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसके मन में, कोई सुझाव नहीं, कोई गलती है तो उसको सुधार कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ बहुत वरिष्ठ भक्त उपस्थित है, हम तो दुष्टता करते हैं बोलने का कुछ प्रयास किए हैं, तो कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद, बहुत अच्छा सुंदर प्रवचन के लिए। और महाराज जी एक छोटा सा प्रश्न था कि जैसे भगवान लीलाएं करते हैं उसमें अपने आप को एक सामान्य पुरुष की तरह दर्शाते हैं, एक बालक की तरह दर्शाते हैं, तो भक्त तो बल्कि उसका एंजॉय मतलब उसको ग्लोरीफाई करते हैं कि मतलब भक्त तो उसका आनंद लेते हैं कि भाई जो है भगवान देखो ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं, लेकिन उसमें जो मूढ़ा लोग होते हैं, जो मतलब असुर लोग होते हैं, वो उसको समझ नहीं पाते और इसलिए वो उसकी आलोचना करते हैं, तो ऐसे लोगों का बल्कि मतलब उद्धार होने की बजाय उनका डाउनफॉल हो जाता है, तो भगवान की लीलाओं का मतलब एक तरह से वो भगवान तो संभव है सबको मतलब बराबर एक इफेक्ट देना चाहते हैं, लेकिन उनका एक डाउनफॉल हो जाता है, मतलब लाइक तो वो कैसे उनका भी उद्धार हो, मतलब जैसे
तो उनका उद्धार के लिए तो व्यवस्था कर रहे हैं ना भगवान, तो भक्तों को तो दूसरे रूप में ये करते हैं भगवान, या असुर लोग के लिए भी भगवान बड़े चिंतित होते हैं, भक्त लोग के लिए जितना चिंतित नहीं होते उनके लिए ज्यादा चिंतित होते हैं, जैसे घर में कोई किसके पांच बेटा हो तो जो बेटा ज्यादा नखरा करता है उसके ज्यादा ध्यान देते ना पिता माता, है ना, जो बदमाशों के लिए ज्यादा चिंतित करते हैं भगवान, और भक्तों के लिए जितना नहीं आते हैं उनके लिए ज्यादा आते हैं, है ना, क्योंकि जानते हैं ये लोग ये नहीं होंगे, सुधरेंगे नहीं जब हम जाके विशिष्ट उनकी चिकित्सा नहीं करेंगे, तो इसलिए भगवान ने क्या कहते उनको उद्धार करते हैं, लेकिन उनको उद्धार करने के लिए यही मात्र है, उनको मारना ये करना वही उसमें उद्धार पाएंगे हो, नहीं नहीं ये लोग तो जाएंगे नहीं ऐसे नहीं तो। तो इसलिए हमको कभी कभी लगता है कि नहीं भगवान ने ऐसे कभी कर देते हैं ये कर, लेकिन उनके भी उद्धार, क्योंकि भगवान कहे हैं कि सुहृदम सर्वभूतानाम ना, ये सुहृद कहने का मतलब है बहुत बड़े चीज है। सुहृद हर कोई नहीं बन सकता है, सुहृद ठीक है भक्त लोग के लिए सुहृद भाव करते हैं उनके साथ ये तो सुहृद है, लेकिन जो अभक्त है उसके प्रति कैसे सुहृद भाव भगवान करेंगे, नहीं नहीं सुहृद मतलब सबके लिए भला जो करते हैं, उनको कोई ग्लोरिफिकेशन करे वो भी भला है अच्छे आदमी है और नहीं, तो भगवान ऐसे गुण प्रकट करते हैं असुर लोग को निपात करके उनको उनके भक्ति के द्वारा ये करके। तो इसलिए प्रभुपाद कहते ना कि जब भी उनको जानकर नहीं है तो भगवान को जानते नहीं फिर भी भगवान उनको कृपा करते हैं, तो ये भगवान की विशेषता है। हम लोग कोई जानकर नहीं हमारा कोई विरुद्ध कर रहा है हमको हमारा कोई ये नहीं करे तो हम तो उसके संबंध ही ये कर देते हैं बंद कर देते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं करते। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। जब हम भक्ति करते तो हमारे आसुरी गुण निकल के आते हैं और बहुत सारे आसुरी गुण निकल के आते हैं, लेकिन जनरल हमारी टेंडेंसी होती है कि हम उनको इग्नोर कर देते हैं, मतलब देख ही नहीं पाते हम अपने आसुरी गुणों को, और चाहे दूसरे भक्तों में इतने गुण होते हैं उनके उसके बावजूद भी हम उनको देखते हैं कि कहीं कहीं कुछ है। कैसे अपने इन आसुरी गुणों को पहचान सकते हैं, और पहचान नहीं बल्कि कैसे उनको याद रख सकते हैं कि हमारे अंदर ये गुण प्रकट हो रहे हैं।
जैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि हम लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कैसे मान जानते हैं हम लोग, एग्जाम में मिल जाता है ना हम लोग कौन सा ग्रेड में है, ए ग्रेड में बी ग्रेड में सी डी और जेड ग्रेड में है, उससे मालूम पड़ जाता है ना। तो कोई ऐसे बुद्धिमान स्टूडेंट होगा तो वो सोचेगा क्यों हमारा कम है, हम तो ए ग्रेड में होना चाहिए, हम क्यों सी डी एफ ग्रेड में क्यों गया, तब जाके वो इंट्रोस्पेक्शन थे। इसलिए तो इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, अपने को पर्यालोचना करना अंतर्मुखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेवा तो हम लोग करते रहते हैं कभी कभी, और सेवा में जो ये मिलना चाहिए कभी कभी भाव उत्साह बढ़ जाता है तो वो सेवा कर लेते हैं, फिर वही उत्साह कम हो जाता है बिल्कुल सेवा नहीं करते। लेकिन सेवा का मतलब होना चाहिए कि हमेशा कोई प्रतिकूल भाव आए कोई अनुकूल भाव आए उसको नहीं देखना चाहिए, सेवा तो ऐसे भाव में करना चाहिए कि यह हमारा जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, इसको समझ कर हम लोग सेवा करना चाहिए। हमको कोई अच्छा कहे बुरा कहे फूलमाला मिले नहीं मिले हमारा नाम अनाउंसमेंट हो सुबह मंगल आरती में नहीं हो उसको नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए हम लोग को अपने को देखना चाहिए कि हम क्यों बीच में इसको नहीं, ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। फिर अपने सपोज हम खुद नहीं कर पा रहे हैं तो जो हमारा ये हैं सुहृद हैं जैसे भक्त का बीच में हमारा कोई तो इंटीमेट ये हैं तो उनको पूछना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी इसमें कहे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन गुह्यम आख्याति पूछती है ना रूप नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, तो गुह्यम आख्याति पूछती मतलब नहीं है कि अपने घर का कॉन्फिडेंशियल बात किसी को कहें, ऐसे नहीं। गुह्यम मतलब परम गुह्यतम क्या है भगवान ने कहे, भगवान का जानना मन मना अभव मत भक्त, ये परम गुहेतम ज्ञान है, उसको हम क्यों नहीं कर पाए हमारा भक्ति में क्या है, ये वास्तविक गुहेतम आख्याति पूछती है। तो उनके साथ हम लोग चर्चा करेंगे, सपोज हमको इंट्रोस्पेक्शन में नहीं पता चलता है कि हम नहीं जान पाते कि हमारा क्या मिस्टेक है, तो उनको क्योंकि उनको जानकारी है वो हमसे एडवांस है डिवोटी आ रही है, नहीं तो गुरु से पूछना चाहिए तब जाके मालूम पड़ेगा। तब क्योंकि हमारा भक्ति करने का उद्देश्य क्या है, प्रेम से हर कोई सेवा आए तो उसको ये करना चाहिए, तो वो क्यों नहीं मिल रहा है। जैसे कोई स्टूडेंट सोचे कि हमारा तो ए ग्रेड आना चाहिए हम क्यों ये सी ग्रेड में एफ ग्रेड में आए, तो भक्ति का लक्षण क्या है उसको जानना चाहिए, तो उसी लक्षण में तो हम लोग को पहुंचना चाहिए कि हमेशा हम लोग को इसमें सेवा करना चाहिए प्रेम पूर्ण सेवा कर, वो क्यों नहीं आ रहे हमारे बीच में। इधर आपको खुद इंट्रोस्पेक्शन करके उसको ये निकालना चाहिए, नहीं तो जो सीनियर वैष्णव है उनकी एसोसिएशन लेके उनकी साथ गृह में आख्याति पुच्छति करके ये जान सकते हैं, तब उसमें सुधार हो सकते हैं। और कोई ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा तो अरे क्या किसी को पूछे हमारा कमी है तो बोलने से कोई हंसी मजाक उड़ाएगा, ऐसे सोचेंगे तो नहीं रह जाएंगे तो ऐसे आप कौन उसको हेल्प कर सकता है, कोई नहीं कर सकते है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय थोड़ा हम ले लिए, 5-7 मिनट आप प्रसाद लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण की, शिलप्रभुपाद की, सामवेद भक्त वृंद की, इताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण, शिलप्रभुपाद की।